You all are welcome in this session of the conference, Research Integration for a Sustainable Future. I would like to invite the guests of the session on the stage. First of all, I will invite Dr. Tawari, who is the guest speaker. Next, I would like to invite Dr. Deepthi Mishra, who is our guest speaker today. I would like to invite Dr. Madhuri Sharan, who is our guest of honor today. B.K. Shashi Didi, who will guide us through the meditation today. All the guests, please have your seat. Thank you. Now we will sit in the remembrance of God for 3 minutes.
समाज हम लाएंगे सबके जीवन में पवित्रता समाएंगे।
Please give big hands to the guests present there. Thank you, sisters. Coming to the topic, research integration for a sustainable future, why we have chosen this topic? Because global challenges require integrated cross-disciplinary thinking for developing a whole person with core values in life, and also to empower today's leaders. Researchers are sitting here who are the leaders of the society to pioneer practical, sustainable transformation in community living and lifestyles, so that today's seeds of knowledge can grow into tomorrow's solutions. We need to have a framework capable of better supporting values of human relatedness, whether it's energy, environment, and economic development, along with divine human beings. I congratulate you all on being here as a part of an integrated congregation of elite researchers of the nation. Now I call upon our first speaker of this session, Dr. Kamal Tawari. He has been secretary to Government of India and he is a retired IAS officer and chairman Khadi and Village Industries and member Planning Commission. Presently he is chairman Rural Business Hub, working for viable investment opportunities in the rural areas. He is also partner and advisor to International Insight of Holistic Research and Voluntary Action, a company based in Germany. Now I invite Dr. Tawari to please come and share your views on the topic. Thank you.
आदरणीय दोस्तों, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी इंस्पायरिंग, वाइब्रेंट, आशावादी नेचुरल सराउंडिंग में आने का मौका मिला। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभूति भी है, आनंद भी है और चुनौती भी है कि अब हम मिलकर उंगलियों की मुट्ठी कैसे बनाए, हाउ टू कन्वर्ज द फिंगर्स इनटू फिस्ट ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस इज ए वेरी बिग चैलेंज ऑफ अवर टाइम। और मैं अभिनंदन करूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, थिंकर्स का, ब्रेन एप्लिकेंट का, जिन्होंने इस विषय को बहुत बड़े समय में, बहुत सही समय में, चुनौतियों वाले समय में लिया है। काम सरल नहीं है, क्योंकि अगर ये सरल होता तो लगभग सभी कर लेते, तो अपने लिए काम करने का मौका नहीं बचता। क्योंकि बहुत चुनौती वाला है और अध्यात्म को समझे बगैर, विदाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ रिसर्च, स्पिरिचुअल डायमेंशंस एक्सटेंशन, एम्पैथी विद द टारगेट ग्रुप, अनऑर्गेनाइज ग्रुप, और जब हम भारत की चुनौतियां को ब्रह्मांड की चुनौतियों के परिपेक्ष में देखते हैं, विश्व की चुनौतियां, तो मेरा जन्म स्थान वर्धा है, गांधी, विनोबा और कुमारप्पा के जीवी के मॉडल में इसको बोलता हूं, हम जब अध्ययन करते हैं तो लगता है ये लोग डुअर थे, थिंकर थे, राइटर थे और बहुत बड़ी परे पार्टी को चलाया। मगर मैं निराशावादी बिल्कुल नहीं हूं, मगर निगेटिव में पॉजिटिव भी होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव में निगेटिव भी है। आज अगर ये सारे मॉडल लगभग फेल है, आशावादी नहीं है, इंस्पायरिंग नहीं है, होप जनरेटिंग नहीं है, यूथ को अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो भी मिसिंग है, ग्लैमराइजेशन कम है। वर्धा में कभी मैं निमंत्रण देता हूं आपको, बहरहाल मैं ज्यादा उसके बारे में न बोलता हुआ सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेटेड रिसर्च का जो ये विशेष है, रिसर्च इंटीग्रेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, नाउ ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर टाइम, इट कांट बी बिफोर 20 इयर्स और आफ्टर 50 इयर्स, इट हैज टू बी नाउ। सो वी हैव चैलेंजेस नॉट ओनली एज ए नेशन बट इवन एज ए वर्ल्ड, एज ए ग्लोबल। सो वर्ल्ड इज ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन, ग्वाला, ग्लोबल विजन, लोकल एक्शन, उसके तीन मॉडल लेकर मैं फिर अपने पॉइंट पर आता हूं। GPS, आप सब जानते हैं GPS का मतलब है जो पोजीशनिंग है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप ग्लोबल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहां पर है, वो GPS की मशीन आपको कार में बतला देती है, GPS। आई कॉल इट चैलेंज ऑफ अवर टाइम, GPS। GPS क्या है? तो एक है जी, गांव, गाय, ग्रामोद्योग, गरीब, गंगा, गौरी, ये जी हो गया, मैं परंपरागत के साथ में ले रहा हूं, मॉडर्न नहीं। दूसरा आता है पी, पी में पब्लिक, प्राइवेट, पंचायत, प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव, पार्टनरशिप, और उसको बोलिए पेड़, पानी, पेट और पर्यावरण, दीज आर द चैलेंजेस, GPS। स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वभाव, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, अलग अलग है, डाइवर्सिटी है, तो इसको लेकर रिसर्च, ये रिसर्च नया नहीं है, देयर इज ऑलरेडी सर्च, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ओनली रिसर्च्ड। मैं एक शब्द बोलता हूं, व्हाट वी से यूजलेस आदमी, यूजलेस आइडिया, यूजलेस जगह, इट इज नॉट यूजलेस, इट इज यूजलेस, क्योंकि उसका पूरा सदुपयोग नहीं हुआ। यहां आता है होलिस्टिक रिसर्च, हमने यूजलेस, जब हम बोलते हैं यूजफुल आदमी, यूजफुल प्रोग्राम, यूजफुल पार्टी, यूजफुल विचार, तो वो है यूजफुली, उसका सदुपयोग हो गया, वो फुल्ली यूज हो गया, इसलिए वो यूजफुल हो गया। बहरहाल मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अनुरोध करूंगा, मेरी बात को कृपया गलत न समझे, मैं भी अब लगभग 70 साल के आसपास पहुंच रहा हूं, 40 साल आयत में रहा हूं, फौज में रहा हूं, गोलियां देखी है और प्रकृति का बलात्कार भी देख रहा हूं, पार्टी भी रहा हूं, मुझे कहने में शर्म नहीं है, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़के देखता हूं, मैं तो बड़े बड़े पदों पर रहा, अगर आज देश का हालत खराब है तो कहना इसे कि मेरा भी छोटा मोटा उसमें योगदान नहीं है, है जो जितने बड़े पद पर था उसका पूरा पूरा योगदान था। प्रश्न है, पहले हम ये समझ ले, सोच और समझ इज माई फर्स्ट पॉइंट, कि भारत जैसे, विश्व जैसे, ब्रह्मांड जैसे विविधता वाले देश, समुदाय, धर्म, खान पान, रहन, सोच, इसको समझने के लिए पहले अपनी सोच अंतर्मुखी करके पहले अपने को समझे, व्हाट इज कमल टावरी, उसके बाद आता है परिस्थितियां समझे। तो रिसर्च जब हम करने जाते, रिसर्च इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड विद व्हाट? शुभ लाभ, स्वार्थ, परार्थ, समाज, तो आता है सस्टेनेबल फ्यूचर के परिप्रेक्ष्य में। अब ये सस्टेनेबल परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, मैं आ रहा हूं अभी करे क्या। मेरा सबसे ज्यादा जोर रहता है यहां तो पान पान की दुकान में पूरे भारत में आपको ज्ञान का भंडार मिल जाएगा। आप आधा घंटा पान की दुकान में बैठिए और आपको सारा दुनिया का ज्ञान वहां मिल जाएगा, किसने क्या किया, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं विश्लेषण के ज्यादा पक्ष में आजकल नहीं रहता हूं, क्यों? बहुत ज्ञानी मुनि ऋषि, जैन धर्म का मैं बहुत बड़ा भगत हूं, ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल वार्मिंग का उत्तर है तो जैन धर्म में है। जीवन प्रणाली, लाइफ स्टाइल, रिसर्च का एरिया, सस्टेनेबल फ्यूचर में जाना है। और तो अपने को पहचान के साथ साथ, अध्यात्म के समझ के साथ साथ अपने को देखना पड़ेगा कहां पर हम मॉडल रखते हैं। दीज आर सीरीज ऑफ परफॉर्मर्स मॉडल। तो मेरा लास्ट जो भाग है वो करे क्या, मेरा पहला पॉइंट है भाव शुद्धि चाहिए, वो आएगी अध्यात्म से। ज्यादा बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप में वो नहीं होता तो आप अलग 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 क्षेत्र से, अलग अलग बैकग्राउंड से इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं आते। एक दूसरा, नॉलेज इन एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ज्ञान इन एक्शन। तीसरा, जब तक हम होलिस्टिक के रोड़ों को नहीं समझेंगे कि इस देश में इतने बड़े बड़े महान विद्वान सब कुछ है, मिलकर क्यों नहीं काम हो रहा है, उंगली का मुट्ठी क्यों नहीं बन रहा है, कारण है ईगो, अहम, मैं महान। दूसरा है समझ कि दूसरा नालायक है, दूसरा कम बुद्धि वाला है, गलत फहमी अपने बारे में। तीसरा, हम में वो संस्कार नहीं डाले गए कि हमको मिलकर काम करना है। ब्रह्मांड के परिपेक्ष में हम सब अलग 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 फूल पत्ती काटे, गाय बैल बकरी, अलग 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 प्राणी आए। डीएनए ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सबका जड़ जो है, जो रूट जो है, वो एक ही है, नो डाउट अबाउट इट नाउ, साइंटिफिकली प्रूव्ड। सो व्हाट टू डू? सो लेट अस रेज अवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में आता है लेट अस एक्सेप्ट स्वार्थ के साथ परार्थ और सर्वार्थ का महत्व। शुभ लाभ एक और शब्द है साहब, जिसके साथ बड़ा अन्याय हुआ। घर घर में भारत में आप जाइए, शुभ लाभ लिखा हुआ मिलेगा दीपावली में, मगर हमने उसका मतलब, उसकी गहराई, उसके डायमेंशन, उसकी डेप्थ शायद कभी समझा ही नहीं। शुभ लाभ, हाँ शुभ लाभ, लोगों को मालूम तक नहीं है, बड़े बड़े पंडितों को भी, कि शुभ लाभ की गहराई क्या है। उसी तरह नीम, तुलसी, जड़ी बूटी वगैरह वगैरह पचासों चीजें। मेरा पॉइंट है हम स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता जब बात करते हैं, गाय गांव गामोद्योग की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में लोकलाइजेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर के साथ ज्ञान उपलब्ध है ये रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, हमको स्वरोजगार के लिए इंटीग्रेटेड रिसर्च पर पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? सीधी सीधी बात है, बड़ी लाइन बनाओ, छोटी लाइन के साथ ज्यादा मत बहस करो, जो जैसी है वैसी है। मैं सबको कहता हूं भारत सरकार 550 ज्वाइंट सेक्रेटरीज है, जो भारत सरकार के सरकार की रीड है। ये 500 ज्वाइंट सेक्रेटरी का जब तक हम सोच, कार्य प्रणाली, महत्वाकांक्षा, उनकी सीमाएं, उनकी रोड़े, उनके मापदंड सफलता के नहीं समझेंगे, हम कोई भी पर्यायवाची सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रिसर्च को नहीं समझ सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसको कहते हैं पूर्व पक्ष प्रतिपक्ष। मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूं, 5 मिनट तो ठीक है, नहीं 5 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सीमा समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो टाइम की हो चाहे धन की हो। अब आता है, बहुत सारा लोगों ने काम किया है, क्या हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं? हम उसको कहते हैं SOPP, सीरीज ऑफ परफॉर्मर्स प्रेजेंटेशन। क्या ऐसे बच्चे हैं जो मेरिट में आ रहे हैं विदाउट ट्यूशन? क्या ऐसे टीचर हैं जिनके बच्चे मेरिट में आ रहे हैं विदाउट ट्यूशन? क्या ऐसे परिवार, गांव, घर है जहां झगड़े नहीं है? ये सारे सोशल सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रिसर्च के एरियाज है। क्योंकि 550 ज्वाइंट सेक्रेटरी फंड देते हैं तो वो रिसर्च की प्रायोरिटी में वो फंड तय करते हैं। मैं कहूंगा क्या हम सरकार से हटकर असरकारी और असरकारी रिसर्च पर जा सकते हैं, और रिसर्च में पहले सर्च कर ले कि कितना रिसर्च पहले हो सकता है। ये देश अगर विश्व गुरु की, मैं 70 साल की उम्र में लगभग अत्यंत जिम्मेवारी के साथ मैंने 40 किताबें लिखी है, प्रयोग किए हैं, आशा की किरणें ढूंढी है, विश्व गुरु बनने की सारी क्षमताएं मौजूद है। इस पर मेरी किताबों में विश्लेषण है। मेरा अनुरोध केवल यह है कि हम अपने रोड़े समझ लें और इन रोड़ों को हटाने के लिए ईगो को मारने के साथ साथ दूसरे को समझने के साथ साथ थोड़ा शुभ लाभ शब्द को ग्लोबलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में लोकलाइजेशन के रूप में समझ ले। तो रिसर्च हमारा आने वाले समय में ऐसा हो जो सरकारी ग्रांट पर ही निर्भर न हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो जगह है पुनीत है, पवित्र है, समृद्ध है, आशावादी है और ऑलरेडी वेल मार्केटेड है। वेल मार्केटेड, मैं फोटो देख रहा था ये इतने सारे इधर में जो बाहर लगे है, मेरे बाप रे बाप, यूएन में, प्रेसिडेंट में, पीस में, यूनेस्को में, तो ऑलरेडी बहुत से आगे है ये, आगे ऑलरेडी इन द लीडिंग। अब प्रश्न आता है हम मिलकर वॉलंटियर्स बनकर जड़ के साथ 3,500 गांव है, 6,500 ब्लॉक्स है और लगभग 650 जिले है, 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अगर हम ये होलिस्टिक रिसर्च, रिसर्च इंटीग्रेटेड, रिसर्च बेनिफिशियल, रिसर्च फॉर ग्लोबल वार्मिंग, रिसर्च फॉर लोकलाइजेशन, रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट ऑफ पीपल, रिसर्च फॉर होप, रिसर्च फॉर विश्व गुरु स्टेटस हम दे सकते हैं, तो क्या हम हजारों करोड़ों अरबों के वॉलंटियर्स के रूप में राजविद्या के साथ, ज्ञान के साथ, भारतीय ध्यान को रखते हुए विश्व गुरु के लॉ स्टेटस को हासिल करने के लिए क्या हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं? वो रिसर्च तब दमदार होगा जब वो जमीन पर उतरने लायक होगा। मैं कहूंगा साहब इसमें मूल सिद्धांत जो है वो अपनी जगह पर रहे। हम चाहते हैं कि खजूरिया साहब यहां बैठे हुए, अच्छा भाई एकदम याद आया मुझे, मेरे गुरु है खजूरिया साहब और मिसेस खजूरिया, गुरु रानी ऐसा बोलने में ठीक है। इन्होंने 4 साल पहले गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार किया था कि जो खाली पड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव गांव में, बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, कॉलेजेस, लेबोरेटरी, साइंस टेक्नोलॉजी पड़ा हुआ है, उनमें स्टूडेंट्स नहीं है, इंजीनियरिंग बेकार, बीएड बेकार, एमएड बेकार। तो मैंने कहा था अरे भाई इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट से जोड़ो, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, गाय का भारत, गौमूत्र का भारत, नीम तुलसी जड़ी बूटी का भारत, वैदिक वाला भारत। बीसी साहब बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, समहाउ हम उसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाए। आज भी उसकी रिकमेंडेशन मौजूद है। मैं खजूरिया साहब को अभी रिक्वेस्ट कर रहा था, खजूरिया साहब जरा जोर लगा के, अब जितने ये बड़े बड़े लोग हैं आईएएस आईपीएस मंत्री एमएलए इनको छोड़ दो, एक बार वाइस चांसलर भी उसमें आते हैं, हम क्यों ना जनता को पकड़ ले। आई विल कॉल इट लेट अस गो टू कस्टमर एंड नॉट टू कलेक्टर। हमने 60 साल में कलेक्टर 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 सरकार 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 डाला है। जिस जगह में हम बैठे हैं, जहां का राशन पानी हम खा रहे हैं, ये जगह मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जितना आभार व्यक्त करूं अलका बहन ईरानी जी का कि उन्होंने कहा नहीं चौधरी साहब आप आइए आपको लगेगा, मैं जानता हूं मगर भोगा नहीं था जिया नहीं था। मैं बहुत बहुत आभार के साथ कहूंगा कि आईसीटी के आने के बाद, कंप्यूटर के आने के बाद, गांव गांव में अपेक्षा जागने के बाद सिंपल सॉल्यूशंस अब नहीं है। वी हैव टू मार्केट, वी हैव टू प्रोवाइड दोज अल्टरनेटिव्स विच हैव नॉट बीन ट्राइड, कन्वर्ट यूजलेस इनटू यूजफुल। बहुत बड़ी चुनौती है और ये मेरे ख्याल से इस बहुत पवित्र जगह के परिप्रेक्ष्य में करने का समय पका है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे मौका दिया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता, अनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं मिलता, हम उनको लाए, रादर उनको अनेबलिंग एनवायरमेंट दे जिससे वो खुद आने की प्रेरणा लेकर। बड़े बड़े लोग घर में बैठे हुए, पेंशन है, सेहत भी अच्छी है, बच्चे अमेरिका में, सब कुछ है, मगर अरे भाई कोई पूछता नहीं हमको। हम उनको कैसे एहसास कराए होलिस्टिक रिसर्च में, चींटी से लेकर हाथी तक, अनपढ़ से लेकर महान विद्वान तक, सबका रोल है ढूंढने की राह मत देखो, आप खुद अपने को पहचानो, आगे आओ, चुनौतियों में जुड़ो और ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन, ग्वाला के इस महान यज्ञ में, विश्वरूप बनने के इस महान चुनौती के समय में आके आपसे जो संभव हो, असंभव की चक्कर नहीं, जो संभव हो सहजता से, सुगमता से, सरलता से, स्वभाव से उसको डाले। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूं और जीवन के बचे हुए समय में जितना भी मिलकर चुनौतियां, मिलकर क्या कर सकते हैं, अकेले अकेले तो कर ही रहे, सभी कर रहे, मिलकर क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग द अनमार्केटेड, मेरा लास्ट वर्ड है, रिसर्च में ये जो चुनौती है इसमें हमको जो बहन जी ने अभी बनाई थी लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी प्रैक्टिकल सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ स्टाइल, इसमें समग्रवादी रिसर्च करने की जरूरत है और रिसर्च नहीं उसमें ज्यादा एप्लीकेशन करने की जरूरत है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके यंग लोगों को इसमें जोड़िए। पढ़ी लिखी बहुत महिलाएं बैठी हुई है घुटन में किसी न किसी चक्कर में, क्यों ना उनको चुनौती का माहौल दे कि खुद को पहचानो, चुनौतियों में जुड़ो और शायद विश्व गुरु बनने में सबका योगदान समय की प्रबल मांग है। आशा की किरणें बहुत है, नए नए ऑर्गेनिक के फील्ड में दुनिया जा रही है। सरकारी आदमी जल्दी नहीं बदलेगा, मैं रहा हूं 40 साल, मैं जानता हूं। वो तभी बदलेगा जब उसके समझ में आएगा कि बदलने से मुझे फायदा है। आज उसको लगता है बदलने में मुझे नुकसान है, ये अपने समझाने की चीज है। जिससे वो समझ ले कि बदलाव में, ब्रह्मांड से जुड़ने में, अपने को पहचानने में और विश्व गुरु की दिशा में जुड़ने में आपको फायदा है, आपको शुभ लाभ है। पैसा ही सब कुछ मापदंड नहीं है, आनंद की बहुत बड़ी तलाश है, कुछ करने की तमन्ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि हम मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनाने में सहयोग देंगे, जो कि एक सरल सहज अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, केवल थोड़ा समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद और अध्यात्म के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़े, मेरी शुभकामना, प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तावड़ी जी का, उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक ये बताने की कोशिश की है कि सभी के अंदर विश्व गुरु बनने की पोटेंशियल है, जिसको बाहर निकाल के सिंगुलर जो सब काम करते हैं वो कलेक्टिवली एक मुट्ठी बनके हम सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, प्लीज clap for him once again. Now I would like to invite my next speaker, Dr. Deepti Mishra. She is the acting principal in Shri Narayan Das Agarwal College of Education, Chhatarpur, Madhya Pradesh. She is a PhD and a gold medalist in MED, and she is the principal of a college where educators are being trained. Let us give her a big clap and let us see what she has to share with us on this afternoon.
सर्वप्रथम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं परमपिता परमात्मा शिव को प्रथम नमन करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे या जिनके आदेश से या मेरे लिए उनकी जो भी पुकार थी कि मैं आबू आऊं और अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष व्यक्त करूं। हालांकि मेरा ज्ञान ज्यादा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मैं तो अभी लर्निंग स्टेज में हूँ, आप लोगों से कुछ सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सम्माननीय मंच पे विराजमान सभी मेरे भाई बहन, सभागृह में उपस्थित सभी विभिन्न राज्यों से आए भाई बहन, सभी को मेरा नमन है और मैं चाहती हूँ कि मेरा नमन स्वीकार करें और मेरी बात को गौर से सुने। हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं रिसर्च इंटीग्रेटेड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। लेकिन रिसर्च से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिसर्च तो एक बात की चीज है, रिसर्च के पहले हमें किसी भी व्यक्ति में या बालक में किन गुणों का विकास होना चाहिए। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वह उसकी प्रथम गुरु होती है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को हम घुट्टी पिलाते हैं तो जायफल है आपका, कहना चाहिए छुहारा है, बराबर घिसते हैं और फिर पिलाते हैं। इसी प्रकार से माँ यदि अपने बच्चे को जन्म से ही संस्कारगत शिक्षा दे कि संस्कार में दया क्या है, करुणा क्या है, इमोशंस क्या है, सेवा भाव क्या है, तो जो संस्कार उस बालक को मिलेंगे उससे एक विकसित राज्य एवं समाज की स्थापना होगी जब वो बच्चा युवा बन जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी विचलित है। साथ में हम जितना भी मीडिया देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी ले ले, तो देश में अराजकता, इसने इसको मार डाला, आज महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, यही घटनाएं हमको दिखाई देती हैं। इन घटनाओं के पीछे आप क्या समझते हैं कि केवल आदमी की भावना है? नहीं, इसको मैं मानसिक विकृति मानती हूं कि कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज गिर गई है या हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, जिससे हम उन संस्कार को नहीं प्राप्त कर सके कि हमारे देश में बहनों की कैसी इज्जत की जाती है, भाइयों की कैसी इज्जत की जाती है, या हमारी एक परिकल्पित समाज के प्रति क्या कल्पना है। दूसरा, जितनी भी अराजकता है आजकल के जो बच्चे हैं किशोर वय, माता पिता के दिए हुए ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षा क्या है? आंतरिक गुणों का शोधन करती है और उसको विकास की ओर ले जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य है, जिससे कि हम उन गुणों का उनमें विकास नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्च तो जब होगी हमारी, जब हम पहले इन गुणों का विकास करें और विकास करने के पश्चात फिर पुराने ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जाए। रिसर्च का मतलब यह है कि पुराने सत्य से नए सत्य की ओर चलना। इसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाना इसलिए जरूरी है कि जब हमारे ऑब्जेक्टिव निश्चित हो जाएंगे, उससे हमारी परिकल्पनाएं, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथेसिस, उनका निर्माण करेंगे, तो हम मूल्य आधारित समाज, जिससे सस्टेबल फ्यूचर की एक कल्पना कर रहे हैं, तो हमें पहले वैल्यू को ध्यान में रखकर ज्ञान और अध्यात्म से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो वैल्यू को यदि हम अध्यात्म से जोड़कर उनको ज्ञान दें कि बच्चों को कैसे पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को रखा जाना चाहिए, ये संस्कार हमें बच्चों को बचपन से ही देने पड़ेंगे, तभी हम मूल्य आधारित समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। अन्यथा समाज में जो विकृति हो रही है, इसके लिए चाहे हम जितनी भी रिसर्चें कर लें, चाहे गणित में कर लें, फिजिक्स में कर लें, केमिस्ट्री में कर लें, और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन रिसर्चों से क्या है, हम बम तो बना लेते हैं, दो मिनट में अपनी बात को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर देते हैं, सारे लक्ष्य प्राप्त करते जा रहे हैं, पर जो आंतरिक गुणों की सुंदरता है उसको हम नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कहा गया कि सत्य ही शिव है और शिव सुंदर है, तो हम उन सत्य और सुंदरता को वैल्यू के द्वारा ही बच्चों में विकसित कर सकते हैं। तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन नैतिक मूल्यों का पतन क्यों हो रहा है। थोड़ा सा मैं यहां भी चलती हूं कि हमारी जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये धर्म से संचालित होना चाहिए, ना कि धर्म इनसे संचालित होना चाहिए। ये सब एक रिसर्च का विषय है जो समाज को विकृति की ओर ले जा रहा है। दूसरा,
आपने महाभारत पढ़ी होगी, हालांकि उस महाभारत में आपने देखा होगा पांडव को जब अज्ञातवास हुआ था तो उस समय एक शांति में वो लोग रहे थे और उस शांति में कि उनको उनके बारे में किसी को पता ना पड़ पाए, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय जो उनके लक्ष्य निर्धारित थे उनके लिए उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया और अपने कार्य के लिए वो आगे बढ़े कि उन लक्ष्यों को जो उन्होंने निर्धारित किया था जो वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो शांति के समय। अर्थात हमारे को हर कार्य के लिए डिवोशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए और पेशेंस की आवश्यकता है। हम रिसर्च की ओर आगे बढ़ते हैं तो मेन होता है कंसंट्रेशन, जिसको हम मेडिटेशन से जोड़ सकते हैं। डिवोशन अर्थात उस रिसर्च में इतनी गहनता में लग जाएं कि हम परम पिता ईश्वर को प्राप्त करके उन मूल्यों की स्थापना एक बच्चे में कल्पना के रूप में देख सकें। तीसरा आपका आता है पेशेंस। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी ईश्वर की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, दोनों ही हम बराबर कह सकते हैं, इसमें कई बार हम असफल हो जाते हैं। इस असफलता का मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारे प्रयास में कुछ कमी हो रही है और उस प्रयास को यदि हम गहनता से लग जाएं तो एक न एक दिन ईश्वर की प्राप्ति होगी और ज्ञान अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। बिना ज्ञान के अध्यात्म नहीं हो सकता है और अध्यात्म के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति रिसर्च के द्वारा, रिसर्च ज्ञान मार्ग से ही होकर जाता है कि जब तक हम उस रिसर्च में ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, अर्थात उसमें हमारा मेडिटेशन का होना, कंसंट्रेशन का होना, डिवोशन अर्थात गहराई का होना और पेशेंस का होना, तीनों चीजों की बहुत आवश्यकताएं हैं। तो मेरी थोड़ी सी सोच अलग है कि रिसर्च करने से पहले हम उन मूल्यों को उन बच्चों में विकसित करें जिससे मूल्य आधारित समाज और राष्ट्र की स्थापना हो सके, जिससे समाज में परिवर्तन हो, राष्ट्र में परिवर्तन हो। इसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। आज इस सभा कक्ष में जितने भी महानुभव बैठे हुए हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि वो हम आपसे जुड़े 5-5, 7-7 बच्चों को यदि संस्कारित शिक्षा दें और वो बच्चे जब आगे कहीं बढ़े तो वो भी अपने बच्चों को दें, तो एक अच्छा नेटवर्क बनेगा और जिससे बिना किसी प्रयास के हम जिस संस्कारवान समाज की स्थापना कर रहे हैं या जिन मूल्यों को चाह रहे हैं, जिससे सस्टेबल फ्यूचर की स्थापना कर रहे हैं, तो और इनको हम अपनी रिसर्च में शामिल करें कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे कहते हैं ना, नारियल है, ऊपर से हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। हमारी उषा बहन जी ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, आम का और नारियल का। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गुणों से भरपूर है, लेकिन हमारा रिसर्च का विषय ये कहता है कि उसकी हार्डनेस को हम कैसे तोड़ें और तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं। जब इन सब चीजों के हमको जवाब मिल जाएंगे तो हमारी रिसर्च अपने आप में पूर्ण हो जाएगी। अर्थात हमें इसमें गहनता और कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना ही है और मेरी जो सोच है कि बच्चों को ही पहले गुणों का विकास किया जाए, तभी मूल्य आधारित समाज की परिकल्पना को हम देख सकते हैं, अन्यथा। और ये सब ज्ञान अध्यात्म से ही संभव है। मतलब मेरा कहने का ये है कि कैरिकुलम में हमको कहीं ना कहीं इन मूल्यों को ध्यान देना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, जिसमें बच्चा उसको पढ़े, उसको एजुकेशन के दौर पे एक पेपर दे जिससे उसकी स्थापना हो। पुराने समय में देखिए व्यायाम हुआ करता था, वो जो बच्चों के शरीर के लिए रहता था। दूसरा नैतिक शिक्षाएं पढ़ते थे,
पंचतंत्र वगैरह की कहानियां पढ़ते थे तो उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान होता था। लेकिन वर्तमान में ये सारी एजुकेशन खत्म हो गई है, बच्चा एक मशीन बन गया है, बैग उसका हैवी हो गया है, उसमें बहुत तरह तरह की अंग्रेजी किताबें हो गई हैं, बहुत सारे विषय हो गए हैं, वो अंग्रेजी जानता है, कंप्यूटर जानता है, लेकिन हमारी वैल्यूज को नहीं जानता है जो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की कि संस्कारों से ही हम सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बार बार इस बात पर स्ट्रेस किया कि रिसर्च तो हम बाद में करेंगे, पहले हम संस्कार बनाएंगे। मैं आप सबकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये कन्वे करना चाहती हूँ कि आप जिस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, ये कॉन्फ्रेंस स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर नहीं, अभी वो आएंगी, अभी इसको बंद कर दो, वो आएंगी तो स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। और ये जो विंग है ये रिस्पॉन्सिबल है इन सब विषयों पे रिसर्च करने के लिए, जो कि हम लेबोरेटरीज में, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं कर पा रहे हैं। तो संस्कार इंजीनियरिंग पर रिसर्च यहाँ पर हो चुकी है और हमारे पास उसके प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। मैडम से मेरा अनुरोध है कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ से लेना चाहती हैं तो शी इज मोस्ट वेलकम फॉर दैट। आवर नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर माधुरी शरण। She is Executive and Research Director, NSN Research Center for Nanotechnology and Bio-Nanotechnology, Mumbai. She has a very vast research and teaching experience in India as well as abroad. She was awarded Merit Scholarship of England for her PhD thesis. She has been a postdoctoral fellow at Boston Institute of Technology, UK. She has been a CSIR pool officer. She has served as a postgraduate lecturer. She held many honorary positions and professional memberships. She has been a chairperson of several advisory boards. She has several publications and patents. She has published numerous research papers in journals of repute of international level. Presently, she is involved in research activities at NSN Research Center as well as at Monarch Nanotechnology Private Limited, involved in bench scale R&D on various aspects of bio and nanotechnology. Kindly, you can contact her for more details on our work after the session. Now I invite Dr. Madhuri Sharan to share her views on the topic.
At the onset of my lecture, I would like to thank the authorities of Brahma Kumaris here, especially the Brahma Kumaris and Brahma Kumars of Kalyan and Ambarnath part of Maharashtra, for giving me this opportunity to be in front of you and share some of my experience in search of science and spirituality. And I would also like to show my gratitude to all those who are here to listen to me. I know this is a very august audience. You have been hearing to very learned people all this time, whereas I am a hardcore scientist who has realized the importance of spirituality right in the beginning. So how I went through this search and how it has affected me, I would be slightly going tangential to SIR topic rather than today's theme. So please forgive me for that. Now, in search of this spirituality and science, that I had an interest in reading the old ancient Indian scientists. Of course, as a syllabus, I had to learn a lot about the modern scientists. We never had in our syllabus old Indian scientists' work to study. But I did put some weightage to them, and they have introduced part of science and spirituality in me. But the direction was given by Dadiji Prakash Mani. I just want to share that for a few seconds. In 1980s, I came with my two young daughters and husband to visit Mount Abu. I just walked into Brahma Kumaris and there was some exhibition going on, and we were watching and just, you know, like questioning some things. And Dadiji, she came here and she asked me, "What's your question?" I and my daughters, we were discussing that. And she took me to another room. Today I don't remember all those questions, but all stupid questions I have been asking her. And she answered them very nicely. And she said, "Have dinner here." And when I was going, she said, "Come and stay here for 10 days. I want you to learn a little more about us." And those 10 days, she showed me the path where how I can travel towards spirituality. Her first meditation, only I was with her in the morning at 4:30 or 4:15 something, and she said, "Close your eyes. You don't close your eyes." But I said, "I cannot imagine things without closing." She said, "Okay." And then she said, "You start your journey. You forget, you take out your Atma and go out of Mount Abu, outside, out of Rajasthan. Go much above, leave India, leave this earth." And she took me to a journey where I passed through many planets, galaxies, and eventually she said, "I'm taking you to a light." And that's where the Paramatma resides. This journey was superb because I was going through planets, etc., and having an interest in knowing the science of universe, that was something which gave me the way that my reading has to be focused in such a way that I can understand science through spirituality. So today's lecture is spirituality through the eyes of a scientist. Now, spirituality, you know the word. You all have been knowing that spirituality is something which is taking you to another plane in life where we are. It doesn't bound us to an objectivity and subjectivity and takes it away from that. This enlightenment was given by Dadiji. And then science. What is science? I got a real meaning of science from Taittiriya Upanishad. Bhrigu Rishi, are all scientists were rishis. Bhrigu Rishi went to his father Varun and he asked, "What is Brahma? What is Brahma Gyan? I want to learn that." So he said, "In one day you can't learn Brahma." He said, "Annam Brahmeti Vyajanaya. Anna ko hi Brahma samjho. Aur tum anna ke upar agar sara gyan prapt kar loge, तो ब्रह्म मिलेगा. सो ही गोज एंड ही नोज अबाउट अन्न, हाउ इट ग्रोज, ही लर्न्स फोटोसिंथेसिस, ही लर्न्स वाटर, विंड, एवरीथिंग इन्वॉल्व विद द अन्न, एंड हाउ अ ट्री गोज, हाउ इट गिव्स फूड एंड हाउ वी टेक इट, कन्वर्ट इट, मेटाबोलाइज इट इन आवर बॉडी. When he learned all that, he came back. Then he said, Pranam Brahmeti Vyajanat. Abhi bhi Brahma nahi bataya. Again he goes in search of that. And like that he tells many things. And finally, when he learns all these things, he says, Vijnanam Brahmeti Vyajanat. Ye Brahm Gyan, tumko through Vijnan hoga, aur wo tumhare andar khud se aayega. जब तुम इतना ज्ञान प्राप्त करोगे. तो अगर वैज्ञानिक इतना ज्ञान प्राप्त करेगा तो फिर आइंस्टाइन ने कहा ही था कि कोई भी वैज्ञानिक अच्छा वैज्ञानिक नहीं हो सकता है इफ ही इज नॉट अ स्पिरिचुअलिस्ट. सो यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रेशन टू ऑल दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस नॉलेज एंड वन ऑफ देम इज यजुर्वेदा. Which talks about the vastness of the universe, but it was created from the smallest research particle. That means, to create something big, you have to learn something which is sukshma se sukshmatar. So, Yajurveda, the word says yatah and juhu. Yatah means space and juhu means speed. Srishti ke shuru mein, when there was nothing, there was space and speed. And when space and speed collided, how can space and speed collide? Without matter, how can it collide? But that is what Vedvyas imagined. When there was nothing, just the space and the speed, space and speed collided and they created negative and positive charges. Today we call them electrons and protons. And they multiplied. And there was so much of them, so many negative, positive charges, that because of one attractional force, they started colliding. And there was a big sound. Today scientists call it Big Bang Theory. We call it Nad Brahma Hai. Om. From that the universe started. So many particles were generated that those particles started getting attracted, creating galaxies, etc. Those atoms united, creating first helium, hydrogen, then eventually going to big atoms like magnesium and iron, etc., and created many planets. And on those planets, when these atoms started taking forms of molecules, they created phosphates, they created ribose or sugar, they created nucleic acid. And when these three things joined together, there were three strong forces, covalent bonding, hydrogen bonding, and van der Waal forces. Those forces got energy stored into them, and DNA was formed, and that was capable of storing knowledge, information, and reproducing. This is how. So that's why when I heard here ki we all are from one origin, advaitvad hai. We all are from one origin. We are all the same. So, and that is the philosophy of this Brahma Kumari. So this was the contribution of Yajurveda to me. Yajurveda also said, Brahmand Ryapta Deha Bhashita Himarja. Brahmand, Brahma ko se anda swarup bataya, shuru se hi. It is elliptical. It is like an egg. So that's how he described the superpower. And then Hayagriva came. He was a big exponent of Vedas and he was a teacher of Agastya Muni, who himself was a big. And he said, Param Jyoti, Param Dham and Paramanu Paratpara. Yani jo great light hai aur jo bahut upar dham hai, wo Paramanu ka bana hua hai. They had the concept of Anu and Paramanu. Atoms, much before Dalton. I can't forget Acharya Kanad. And you know who took his name first when I met Abdul Kalam? He said about this Acharya Kanad. So I like to pay my obeisance to him. He was the one who postulated the theory of atoms, that atoms are indivisible. Science started from there. And these people were enlightened souls. They knew what is spirituality. And that's how they got the knowledge for which they may not have had enough equipments like today. But they could postulate things which is true even today. Bhaskaracharya, before Newton, 1200 years before Newton, Newton ne dekha apple gira to law of gravity tha, nahi. Bhaskaracharya was sitting in front of a waterfall and he was looking at the water going down and down, and then he thought of this law of gravity, Gurutvakarshan, and eventually he propounded that it is not only on this earth, but even all the planets, even the whole universe is bound with certain attraction. They are continuously in a motion and they are not colliding. Otherwise, just imagine Earth, Moon, Jupiter. Suppose they all are moving so fast, if they start colliding, we will be gone in a day. This concept he developed now. But Bhaskaracharya was a great rishi. Such people, they brought science because they knew. I can't pay my gratitude to Acharya Charak enough, because I myself am working in the field of drug delivery and cancer and neurodegenerative disease therapy. That man, in a lifetime, writing about 10,000 plants, their properties, when you take them, what happens to your body, what you should eat, how you should eat, in one lifetime writing such a big treaty, an ordinary person cannot do. One has to be a very, very super powerful person to contribute science like that. And there is umpteen number of them. Some of them, I am just going to mention here, Kanva, who wrote about the wind, the tribology and all that. Bharadwaj, who wrote about Viman Shastra. And I remember one scientist from Bangalore said, oh, Viman Shastra is figment of Maharshi Bharadwaj's imagination. Professor Sharan, he's working in our lab as a research director, he wrote a project and gave it to CSIR, and CSIR funded it. He took two shlokas from Viman Shastra, and in that shloka, it was written how to make a chumbak mani, which from a plane can detect what if there is any mind spread underneath or not. So then he prepared that. When he prepared that, we presented it on TV, and then Italian Eurovision came to India and made a full film on Professor Sharan, and he made it, but he had to prepare that. And you will be surprised, all his material that he used, they were natural material like buffalo sing and some salts and some plants, etc. It was difficult to decode them because many names were Vedic era name and we didn't know the exact meaning of those names. But anyway, so Viman Shastra was not a figment of imagination. Sushruta, he did so many operations, you know, right from cesarean to rhinoplasty, nose placement to plastic surgery to cataract, bone surgery, everything he did. And that was many, many, many years ago, before this modern this came. And one more thing, Sushruta and Charak, they had written the oath that what a doctor has to do, what are the limits or the working disciplines of a doctor. Nowadays, doctor take oath after doing that, but it was not done before by oath, the scientist of West, but it was done by Charak and Sushruta. Aryabhatta, the great scientist, we all know him, on his name we have made, and he wrote Aryabhatiyam at the age of 23. At the age of 5, he started meditation. And at age of 23, he can write such a beautiful book, And in that book, he says that Earth is round. First, it rotates on its axis, and then it goes all around the sun, etc. And motion of planets, and when the eclipse will occur. And based on his Aryabhatiyam, today's Panchang is made. From 3,000, 4,000 years from today, you can predict when will be sun eclipse, when will be moon eclipse, up to the accuracy of seconds. Spiritual knowledge ke saath hi science develop hua tha. Varahamihir, there are many. I think I'm going to stop some of them, and I'll be coming to when I was having these knowledge, I started NSNRC. NSNRC is our research center's name, and my logo says with roots in future. And why I wrote this with roots in future? Because in it is said in, I'm forgetting the name of the Upanishad, it is said that Urdhva Moolam Vak Shakha Eto Chate Sanatanah. Sanatan kya hai? Jiski shakhaen urdhva hai. Jiski jadein urdhva hai. Yani upar hai. Aur shakhaen puri phaili hui hai. Woh sanatan hai. Woh hamesha rahega. This is what nanotechnology. Jad agar urdhva hai, iska maane it is not attracted by any gravitational force. Gravity doesn't attract. Same is with nanotechnology. Nanomaterials are not attracted by gravitational force. They defy. And so I wrote with roots in future. It is based on the Sanatan concept. So what is nanotechnology? In very short, you all must be knowing nowadays, everybody knows nanotechnology. It is something which is as small as 1 to 100 nanometer, in that range. Anything bigger than that is not nano. Anything smaller than that is a quantum material. So below 1 nanometer, it follows quantum physics. Above 100 nanometers, it forms classical physics. But the materials which are in the range of 1 to 100 nanometers, they follow nanotechnology. These materials have very, very specific characteristics. A gold which is yellow at nano size becomes either blue or red or gray. Have you seen the, old churches or buildings, green glasses on their windows, red glasses, blue glasses? They are because of gold nanoparticles embedded into the glass. Those people were doing it, only they didn't have electron microscopy, so they did not know that they are creating nanoparticles. And our group, some of them are here, we are working for the application of nanoparticles in various fields. How much time I have? Okay, I have just 2 more slides. Okay, 2 minutes. Our R&D activities are alkaline fuel cells. Fuel cells are supposed to be supporting the energy crisis in future. I and Professor Sharan, we have prepared the roadmap of energy crisis, how to solve it for Ministry MNRE, non-renewable energy, for till 2022. So we have paid that. Our lab, our research director, he is also known as father of carbon nanotechnology in India. He has prepared a carbon nano solar cell, homojunction solar cell, which is first homojunction solar cell along with Japanese collaboration. And now he is working on that solar cell, our group is here, using graphene. And we are working on microwave absorption. This is a project funded by DRDO. You know American planes, they are coated with a nanoparticle, so enemy cannot detect them because they absorb microwave. We could not get this technology from America, so we were given this project in our lab. We have already developed technology for a material that can absorb 8 to 18 gigahertz. So their radar cannot detect our planes if we coat them with this. Now DRDO wants us to... this is the last slide. DRDO wants us to develop 2 to 8 gigahertz also, and which we have almost completed, and now we can block enemies communication also with that. Hydrogen storage is required for new hydrogen cars that are coming up. We need nanoparticles to store because we can't take big hydrogen cylinders in our car. We are developing that and we have come to a very good result. Nano deodorizer is a deodorizer, and it's, we are ready to transfer this technology. You can just hang this nano material on all the railway toilets which are stinky, and it will get deodorized. Water purification system, all the water purification that we have, they are all not very, very good in completely killing all the microbes. We have used titanium oxide and carbon nanomaterial. Other R&D activities are in the field of bio antimicrobial studies. We have developed nanoparticle coated fabric that can be used for the bedsore patients so that they don't get infected, for the mask of the doctors and the patients so that they don't either inhale or exhale. Anything that they inhale or exhale that gets killed through this nanoparticle coated material. And we propose that it can be used for army uniform, because army people don't take bath for ages and they come back with the khujli in their backs. So that will be very helpful for them. We are looking for the buyers of these technologies. We are working on a biosensor using antibody and gold conjugated. This is for the, again for the military people, NMRL for naval people, because they take water with them and it gets over the, when they take it, it is nice and healthy water with hardly one or two microbes. But during 6 months storage, it multiplies. So this is a simple biochip. They have to simply dip it in water and they can tell how many microbes are there. Our major work is in the area of drug delivery for cancer and neurodegenerative diseases. And of course, we are also working on in vitro culture and production of medicinal plants and ornamental plants. With this, I thank you for a very, very patient hearing, and Om Shanti.
Thank you very much, Dr. Madhuri Sharan. She has shared her loving experiences with Brahma Kumaris, especially Dadi Prakash Mani ji. She has expressed that she has expressed her views through the eyes of a scientist on spirituality, and she feels every researcher is a spiritualist. That's what we also believe. That is why we have a gathering of researchers from different fields. Now before going to guided meditation, I would like to invite some people from the delegates sitting in the hall. As we are having a conference on integrated research, we have an integrated gathering of researchers. So this conference becomes of international level because people from Nepal are also sitting here. And if anybody from Nepal side is present here and wants to express his or her views on the theme, you are welcome. Is there anybody in the hall from Nepal? So since nobody is there, so I would, yes, please. You can directly come here to express your views as we are running short of time.
Puskar Bajrachari,
take 2 minutes just to express your view.
Just 2 minutes?
Yeah. This was because by 6 o'clock we have to give a break. So I welcome Shri Pushkar, Pushkarji, Padracharya ji to share his views on the theme. Please give him a big clap.
Dignitaries at a dais and Ben or Bhaiyom. First of all, I would like to thank Brahma Kumaris for giving me this time to share a few of my stray thoughts on probably two issues, values as well as research integration. Since there is very limited time, I'm going to present a few of my hypotheses only. And we have been listening to many learning kind of approaches, emphasizing on requirement, need for building value-based in our research. One issue I would like to bring here is a large number of researches are being conducted in the world, and particularly in related to when the subject matter is human, animal, livelihoods, crops, etc. Western societies, there are many ethical and other societies which have to approve these standards. For example, right now I am involved in a long-term kind of medical research that has been approved by the British Society of Ethics. What I am trying to contemplate is that since we are making these kinds of discourses, since we are bringing out these kinds of issues, what is required is, why don't we develop the standards and benchmark inculcating our values, our perspectives, our vision, and simply one Western society or societies of a particular nation state is not going to be adequate. Let's work towards building a kind of standard associations for research at the international level, incorporating our values, our feelings, spirituality included, of course. I'm sure that is one contemplation I would like to make. The second is that when we are talking about sustainability, the world, we know that a large number of resources in this world are going to be ended up. Our future generations may not have time, may not have even opportunity to see some of these resources. And these kinds of things are going to create a lot of problems and challenges in the future. For example, petroleum crisis in the 70s brought out many wars, conflicts, other kinds of problems. Personally, I am forecasting, my estimation is that by 2050, there will be severe conflicts for pure drinking water. To control the sources of the drinking water, which is the basic lifeblood of the human society or total livelihoods in the world. So if that is the situation, we have a lot of lessons, we have a lot of research findings, and we have a lot of proven illustrations to state that these resources can be sustainably used. These can be taken, the life of there can be taken to 500 years, thousands of years. But only if we develop some kind of standards, only if we bring them into the research. Therefore, resource sustainability, resource use, research applications, and the methodology of the research itself will require to be integrated in such a way that the future conservation not only is required from the present perspectives. We should not be living on the borrowed resources of future, rather we should be living a lot of resources to the future. Finally, one issue that I have always been trying to make. Institutions like this are doing wonderful efforts for the sake of uplifting the humanity and human sorrow. We must appreciate them. But in all of this, what I have personally seen is they will have to come and seek the help. But a large number of people in the world cannot reach to us. Therefore, we must develop a mechanism to reach to them. For example, today's biggest problem is the problem of absolute poverty. And they are not going to come here. They have all these problems of from knowledge to shakti to whatever we have been talking in this morning or all the times. Therefore, what I have been claiming is that, yes, we can develop the strategies. We know knowledge is there, how to address the poverty. Personally, I have been saying within 10 years, at about 1/4 of the resources that all the countries are spending, we can eradicate poverty from this world. But we have to reach to them. Therefore, how? There is no time, neither the subject matter is very related. But what I am trying to say here is that all these agencies, all the individuals, all the knowledgeable people have to come for that good cause. And in that case, even these things can be brought up so that the real happiness in the world, happiness for the man can be made. Thank you very much.
Thank you very much, Pushkarji. Now, I will invite B.K. Shashi Didiji to guide us through the meditation relating to the topic. Shashi Didi, she is M.A. LLB. She is Center in Charge Brahma Kumaris at Santa Pateri Sub-Center, that is in Bhopal. Zonal Coordinator of Spark Wing Bhopal Zone. She is a Raj Yoga teacher since 1995. So let us see how she takes us to the meditation relating to the topic. ओम शांति. सभी बोलेंगे ओम शांति. आज मॉर्निंग से ही आप सब अपने आप को खोजने में लगे होंगे कि यहां पर जो हमारी पहचान बताई गई कि हम कौन हैं, तो पा लिया सभी ने कि हु एम आई का आंसर मिल गया. कौन है आप सभी? आत्मा है. इस पंच तत्व के शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, शरीर नहीं है. दिन में न जाने कितने बार हम लोग मैं और मेरा कहते हैं ना सभी, मैं और मेरा. मैं कौन और मेरा कौन? सभी यही कहते कि मेरा शरीर है. कभी अभी अपने परिचय में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं शरीर हूं. तो शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? ये शायद पहेली यहां आने के पहले तक नहीं सुलझी रही होगी, लेकिन यहां आने के पश्चात ये पता चला कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है. आंखों के द्वारा भी आत्मा ही देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, शरीर के द्वारा कोई भी एक्ट आत्मा करती शरीर नहीं करता. शरीर तो सिर्फ माध्यम है. मैं आप लोगों को एक छोटा सा दृष्टांत दूंगी कि एक माताजी थी, उनकी सुई खो गई थी. वो अपने घर के बाहर सुई ढूंढ रही थी, बहुत देर से ढूंढ रही थी. एक भाई ने उन्हें देखा, माताजी बहुत परेशान हैं, कुछ ढूंढ रही हैं. वो उनके पास आए और उनसे पूछा, माता जी आप क्या ढूंढ रहे हो? माता जी ने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, वो मैं ढूंढ रही हूँ। भाई ने पूछा, माता जी सुई कहाँ खोई है, कहाँ गिरी है, आपको पता है? बोले हाँ बेटा अच्छे से पता है। बोले कहाँ गिरी है? बोले वो तो अंदर गिरी है। बोले सुई अंदर गिरी है और आप बाहर ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगी? बोले बेटा वहां अंधेरा है ना, दिखाई नहीं देती। हम सबका भी यही हाल है कि हमारी सुख शांति हमारे अंदर है और हम उसे कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं, बहुत दिनों से खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी रूप से नहीं मिल पाई होगी। अभी चलते हैं उसकी अंदर खोज करेंगे। अगर सुख शांति बाहर मिलने वाली होती तो मिल गई होती, नहीं मिली ना, तो आइए कैसे उसे अंदर तलाश करेंगे। इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाते बजाते हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं। जब पहली बार इस सृष्टि चक्र में हम आते हैं, परमात्मा हमारी बैटरी को फुल चार्ज करके भेजता है, और जैसे चक्र के अंदर हम प्रवेश करते परमात्मा से हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्शन कट हो जाने के बाद हम अपनी बैटरी यूज तो करते हैं लेकिन चार्ज नहीं कर पाते। कब तक? चार युगों तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आते आते हमारी जो बैटरी है ना वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और सुख शांति की तलाश में हम दर दर भटकने लगते हैं कि वो कहाँ से मिलेगी। तब परमात्मा आकर हमारी पहचान हमको देते और सुख शांति का स्थान बताते कि वो आपके अंदर ही है, जहां से प्राप्त होगी आपकी सत्य पहचान के द्वारा। तो आइए हम अपनी आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे। ओम शांति। इस पंच तत्व के शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मुझ आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में भ्रक्ति के मध्य में है। अभी मुझ आत्मा की शक्तियां क्षीण हो गई हैं, उन्हें पुनः चार्ज करने के लिए भ्रक्ति के मध्य से निकल अनुभव करेंगे कि एक दिव्य ज्योति आत्मा भक्ति के मध्य से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है। पंच तत्व की दुनिया के पार चांद सितारों के भी पार मैं अपने पिता परमात्मा के पास परम धाम जा रही हूँ।
जिसे शांति का देश, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक और ब्रह्मलोक के नाम से भी जाना जाता है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा परम ज्योति अपनी आभा को बिखेरते हुए असंख्य किरणों के सहित विराजमान है। मैं आत्मा धीरे धीरे परमात्मा किरणों की बाहों में समाती जा रही हूं। समाती जा रही हूं। और परमात्मा के अति निकट विराजमान हो गई। परमात्मा सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से मुझ आत्मा को श्रृंगारित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपनी बैटरी को चार्ज करके शक्तियों से भरपूर होकर इस साकार दुनिया में पार्ट बजाने के लिए इस साकार शरीर में भक्ति के मध्य पुनः विराजमान हो गई। परमात्मा द्वारा प्राप्त शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, अंग प्रत्यंग में समाती जा रही है। मेरा शरीर स्वस्थ और सतोप्रधान बनता जा रहा है। और मुझ आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैलने लगी है। आसपास का वातावरण पॉजिटिव होता जा रहा है। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच शशि बहन जी, यू हैव गिवन अस अ वंडरफुल एक्सपीरियंस in a very short time. Thanks once again.